आप निरंतर आशुतोष कृष्ण शास्त्री से मनुस्मृति श्रवण कर रहे हैं। आज षष्ठ अध्याय में 42वें श्लोक में सन्यासी के एकाकी विचरण के बारे में विधान करते हुए महर्षि मनु कहते हैं, एक एव चरेन नित्यम सद्धर्य सद्धर्थम सहायवान सिद्धमेकस्य संपश्यन् न जहाति न हीयते। एकस्य सिद्धिम संपश्यन्, अकेले की ही मुक्ति होती है इस बात को देखते हुए सिद्ध्यर्थम मोक्ष सिद्धि के लिए असहायवान किसी दूसरे के सहारे या आश्रय की इच्छा से रहित तो होकर नित्यम सर्वदा एकः एव चरेत, अकेले ही विचरण करना चाहिए। अर्थात किसी पौत्र पुत्र संबंधी मित्र या आदि का आश्रय नहीं लेना चाहिए। इस प्रकार रहने से न जहाति न ही यति, न वह किसी को छोड़ता है न उसे कोई छोड़ता है, अर्थात वह मोह रहित हो जाता है और मृत्यु के समय बिछुड़ने के दुख की भावना समाप्त हो जाती है और निर्लिप्त भाव से भिक्षा ग्रहण करना चाहिए। इसका विधान 43वें श्लोक में बताया गया है। अनग्निरत निकेतः स्यात् ज्ञामम अन्नार्थमाश्रयेत उपेक्षको सुंकुसुमो मुनिर्भाव समाहितः। वह सन्यासी अनग्नि ही अहवनीयादि अग्नियों से रहित अनिकेतः और कहीं अपना स्वामीभत घर भी न बांधे, अन्नार्थम ग्रामम आश्रयेत और अन्न वस्त्र आदि के लिए ग्राम का आश्रय लेवे, उपेक्षकः बुरे मनुष्यों की उपेक्षा करता, असंकुशुकः और स्थिर बुद्धि, मुनि मननशील होकर भाव रहित होकर भाव समाहित होकर भाव समाहिता परमेश्वर में अपनी भावना का समाधान करता हुआ स्यात् विचरे। 44वें श्लोक में मनुष्य के लक्षण बताते हुए मुक्त मनुष्य के लक्षण बताते हैं। कपालम वृक्षमूलानि कुचैलम सहायता समता चैव सर्वस्मिन् नेतन्मुक्तस्य लक्षणम्। कपालम अर्थात मिट्टी का बर्तन, वृक्षमूलानि रहने के लिए वृक्षों की जड़, कुचैलम अनाकर्षण वस्त्र या वल्कल, असहायता किसी से आश्रित न होना और सर्वस्मिन् समता एव सम्मे समान दृष्टि, एतत् मुक्तस्य लक्षणम्, ये मुक्ति व्यक्ति के लक्षण है। और 45वें श्लोक में जीवन मरण के प्रति समदृष्टि रखते हुए नाभिनन्देत मरणम नाभिनन्देत जीवितम कालमेव प्रतीक्षेत निरदेशम भृतको तथा। अर्थात न जीवितम अभिनंदित, न तो जीवन में ही आनंद रहना चाहिए और न मरणम अभिनंदित और न मृत्यु का दुख माने, किंतु यथा जैसे भ्रतकः निर्देशनम क्षुद्र भ्रत्य अर्थात नौकर अपने स्वामी की आज्ञा की बाट देखता रहता है, वैसे ही कालमेव प्रतीक्षते काल और मृत्यु की प्रतीक्षा करता रहे। पवित्र एवं सत्य आचरण करने का विधान 46वें श्लोक में बताया गया है। दृष्टिपूतम नसेत पापम पत्रपूतम जलम पिबेत सत्यपूतां वदेत वाचम मनःपूतम समाचरेत। दृष्टिपूतम पदम नसेत, जब सन्यासी मार्ग में जाए तब इधर उधर देख न देख कर नीची पृथ्वी पर देख कर दृष्टि रख के चले। वस्त्रपूतम जलम पिबेत, सदा कपड़े से छाना हुआ जल पिए। सत्यपूताम वाच वदेत, निरंतर सत्य ही बोले। मनः पूतम समाचरेत, सर्वता मन के विचार से सत्य का ग्रहण और असत्य को छोड़ देवे। अर्थात चलते समय आगे आगे देख के पग रखे, इधर उधर संसार में मन को न भटकाए, छान कर जल पिए, सत्य वाणी बोले और सत्योपदेश ही करे, और जो कुछ व्यवहार करे वह सब मन की पवित्रता से आचरण करे। सन्यासी के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण नियम 47वें श्लोक में बताया गया है। अतिवा अतिवादां स्थितिक्षेत नावमन्नेत कंचन मम चेमं देहमाश्रित्य वैरं कुर्वीत केनचित। अतिवादान तितिक्षेत, अपना अपमानजनक वचनों को सहन करके कंचन न अवमन्नेत, किसी का अपमान न करे। और इमं देहं आश्रित्य, इस शरीर का आश्रय लेकर अर्थात अपने मन वाणी और कर्म से केनचित वैरम न कुर्वीत, किसी से वैर नहीं करे, ऐसा सन्यासी का धर्म बताया गया है। क्रोध नहीं करना चाहिए, 48वें श्लोक में भगवान मनु विधान करते हुए कहते हैं। क्रुध्यंतम न प्रतिक्रोधे दा कृष्टः कुशलं वदेत्, सप्तद्वार विकीर्णां च न वाचनम अनर्तां वदेत्। क्रुध्यंतम, जब कहीं उपदेश या संवाद आदि में कोई सन्यासी पर क्रोध करे अथवा आकृष्टः निंदा करे तो सन्यासी को उचित है कि न प्रतिकुद्धयेत्, उस पर पाप आप क्रोध न करें। यदि प्रतिपक्ष वाला क्रोध कर रहा है तो आपको क्रोध नहीं करना। कुशलम वदेत, किंतु सदा उसके कल्याणार्थ उपदेश ही करे। च सप्तद्वार अवकीर्णा वाचम अनृताम न वदेत। सप्तद्वार कौन कौन से? एक मुंह, दो नासिका, दो आंखें और दो कान। इन छिद्रों में बिखरी हुई वाणी को किसी मिथ्या कारण के से कभी न बोले। और आध्यात्मिक आचरण से स्थिर रहे, इसका विधान 49वें श्लोक में करते हैं। आधा आध्यात्म रतिराशीनो निरपेक्ष निरामिषः, आत्मनैव सहास्येन सुखार्थी विचरेदिह। इह आध्यात्म रति आसीनः, इस संसार में आत्म निष्ठा से स्थित, निरपेक्षा सर्वथा अपेक्षा रहित, निरामिषः मांस मद्य आदि का त्यागी, आत्मनः एव सहायेन आत्मा के सहाय से ही सुखार्थी सुखार्थी होकर विचरित विचरा करे और सबको सत्योपदेश करता रहे। और भोजन में पाखंड नहीं करना चाहिए, ऐसा सन्यासी को आदेश देते हुए 50वें श्लोक में विधान किया गया है। न चोत्पात निमित्ताभ्याम न छत्रांगत अविद्यया नानुशासनवादाभ्याम भिक्षाम लिप्सेत करहिचित। उत्पात निमित्ताभ्याम, भूकंप आदि उत्पात को बताकर उसके भय से आतंकित करके, आंख का फड़कना आदि के फल बताकर, नक्षत्र अंगविद्या राहुकेत के ग्रह तारों के अशुभ शुभ फल बताकर, हस्तरेखा आदि देखकर, अनुशासन वादाभ्याम धर्म का अनुशासन बताकर, वाद विवाद आदि वादों को कश्चित विद्या भिक्षाम नलिप्य से, इन सब बातों को बताकर कभी भिक्षा प्राप्त करने की इच्छा नहीं रखना चाहिए। नतापसैर ब्राह्मणैर्वा वयोभिरपि रपि स्वा वासभिः अकेण भिक्षुकैर्वान्यै अरागारमुप संव्रजेत। तपसैः ब्राह्मणैः वयोभिः स्वभिः अपि वा अन्यैः भिक्षुकैः, तपस्वियों ब्राह्मणों पक्षियों कुत्ता और कुत्तों और सब भिक्षुकों से अकीर्णम मागरम भरे हुए घर में न उपसंव्रजेत, भिक्षा नहीं मांगना चाहिए। अर्थात जहां पर तपस्वी हैं, ब्राह्मण हैं, पक्षी हैं, कुत्ता हैं और भिक्षुक हैं, दूसरे भिक्षुक हैं, उनके घर में भिक्षा नहीं मांगना चाहिए। और सन्यासियों का वस्त्र इत्यादि वेशभूषा के बारे में विधान करते 52वें श्लोक में गिरहे वस्त्रों का विधान किया गया है।
वक्लप्त केशन क्लप्त्र केशन खश्मश्रुः पात्री दंडी कुसुम्भवान् विचरेन्यतो नित्यं सर्वभूतान्यपीडयन्।
क्रप्त केश नखः स्मश्रुः, केश नख दाढ़ी और मूछ को छेदन करवावे। पात्री दंडी कुसुम भवान, पात्र दंड और कुसुम्ब आदि से रंगे हुए वस्त्रों को ग्रहण करके नियतः नियत आत्मा सुख दुख से जो परे है उस आत्मा से सर्वभूतानि अपीडयन, सभी भूतों को कष्ट सभी प्राणियों को कष्ट न देकर विचरेत सभी जगह विचरण करे।
अतैजसानि पात्राणि तस्य स्युर्निब्रवाणि च तेषामध्वि स्मृतं शौचं चमसाना मिवाध्वरे।
तस्य पात्राणि अतैजसानि च निर्व्रणानि स्युः, इस सन्यासी के पात्र में धातुओं से न बने हों, सोना चांदी इत्यादि से न बने हों, टूटे फूटे अथवा छिद्र युक्त न हों। तेषाम उन पात्रों की अध्वरे चमसानाम्यव, जैसे चमचों की शुद्धि कही है वैसे अध्वि शौचम स्मृतम, जल से शुद्धि मानी गई है।
अलाबुं दारु पात्रम च मृण्मयं वै दलं तथा एतानि यति पात्राणि मनुः स्वायम्भुवो ब्रवीत्।
अलाबुं दारुपात्रं मृण्मयं तथा वैदलदम्, तुम्बा लकड़ी का बर्तन, मिट्टी से बना बांस और तथा बांस से बना, एतानि पात्राणि ये पात्र सन्यासियों के लिए स्वायम्भुव मनुः अब्रवीत्, स्वायम्भुव मनु ने कहे हैं। एक समय ही भिक्षा का विधान बताया गया है।
एक कालम चरेत भैक्षम न प्रसज्जे तविस्तरे भैक्षे प्रसक्तो ही यतिर विषये स्वपि सज्जति।
सन्यासी एक कालम भैक्षम चरेत, एक ही समय भिक्षा मांगे, विस्तरे न प्रसज्जेत, भिक्षा से अधिक विस्तार अर्थात लालच में नहीं पड़े, क्योंकि ही भैक्षे प्रसक्तः यति, भिक्षा के लालच में यदि स्वाद में मन लगाने वाला सन्यासी विषयेषु अपि सज्जति, विषयों में फंस जाता है।
विधूमे सन्नमुसले व्यंगारे भुक्तवज्जने व्रत्ते शराव संपाते भिक्षाम नित्यम यतिश्चरेत।
विधूमे सन, जब घर में रसोई बनाने वाले का धुआं उठना बंद हो गया हो, अमुशले जब मूसल की आवाज ना आती हो, वी अंगारे जब भोजन पकाने वाली अग्नि मुक्ष भुज गई हो, भुक्तवत जने परिवार के लोगों ने जब खाना खा लिया हो, सराव संपाते व्रत्ते खाने के बर्तन खाना खाकर डाल दिए गए हो, ऐसे समय में यति ही भिक्षाम चरेत, यति ही नित्यम भिक्षाम चरेत, सन्यासी सदा भिक्षा मांगे। 56वां श्लोक प्रक्षिप्त माना गया है, क्योंकि इसमें मनु व्यवस्था के विरुद्ध बात बताई गई है। इस श्लोक में कहा गया कि यदि जब तब घरों से भिक्षा मांगे जब घर के व्यक्ति खा चुके हों, गृहस्थ को वलिवैश्य देव के उपरांत ही भिक्षा देने का विधान है, और फिर अतिथियों को खिलाकर सबके बाद खाने का विधान किया गया है, तो शेष भोजन खाने का निर्देश है। इस प्रकार विरोध स्पष्ट होता है, अतः यह श्लोक प्रक्षिप्त माना गया। 57वें श्लोक में यदि भिक्षा नहीं प्राप्त होती है तो उसके लिए चिंता करने की आवश्यकता, दुख करने की आवश्यकता नहीं है, इसका आदेश देते हुए महर्षि मनु कहते हैं, अलाभे न विषादी स्याल लाभे चैव न हर्षयेत् प्राणयात्रिकमात्रः स्यान् मात्रा संगाद् विनिर्गतः। अलाभे विषादी न स्यात्, भिक्षा न मिलने पर दुखी नहीं होना चाहिए, और लाभे न हर्षयेत्, और मिलने पर प्रसन्नता का अनुभव नहीं करना चाहिए। मात्रा संगात विनिर्गतः, अधिक कम अच्छी बुरी भिक्षा की मात्रा का मोह न करते, जैसी भी भिक्षा मिल जाए उसे ग्रहण करके प्राणयात्रिक मात्रा स्यात्, केवल अपने प्राण यात्रा को चलाने योग्य भिक्षा प्राप्त करता रहे, और प्रशंसा में नहीं फंसना चाहिए, क्योंकि इसका विधान करते हैं 58वें श्लोक में, अभिपूजित लाभांस तो जुगुप्से तैव सर्वसः अभिपूजित लाभैश्च यतिर्मुक्तोऽपि बध्यते। तू अभिपूजित लाभान और बहुत अधिक आदर सत्कार से मिलने वाली भिक्षा या अन्य सभी लाभों से सर्वसः एव जुगुप्सेत, सर्वता उपेक्षा करे, क्योंकि अभिपूजित लाभ ही है मुक्ति ही अपि यति ही बध्यते। बहुत अधिक आदर सत्कार से प्राप्त होने वाली भिक्षा से अथवा लाभों से मुक्त सन्यासी भी विषयों में फंस जाता है, और इंद्रियों पर नियंत्रण रखकर मोक्ष के लिए सामर्थ्य बढ़ाए। अल्पान्नाभ्यविहारेण रह स्थान स्थानासनेन च हृणमाणानि विषयैर विषयैः इन्द्रियाणि निवर्तयेत्। विषयैः हृणमाणानि इन्द्रियाणि, विषयों के खींचने वाली इंद्रियों को अल्प अन्न अभ्यवहारेण, थोड़ा भोजन करके और रह स्थान आसनेन, एकांत स्थान में निवास करके वश में करे, निवर्तयेत्। और इंद्रियाणां निरोधेन राग द्वेष क्षणेण च अहिंसया च भूतानां अमृतत्वाय कल्पते। इंद्रियाणां निरोधेन, इंद्रियों को अधर्माचरण से रोककर, राग द्वेष क्षण, राग द्वेष को छोड़े, च भूतानां अहिंसया, सब प्राणियों में निर्वैर वर्त कर, अमृतत्वाय कल्पते, मोक्ष के लिए सामर्थ्य को बढ़ाया करे, क्योंकि अन्य भी स्थानों पर, अन्य भी शास्त्रों में, जैसे योग दर्शन में जो दूसरा सूत्र बताया गया है, महर्षि पतंजलि कहते हैं, योगश्चित्त वृत्ति निरोधा अभ्यास वैराग्याभ्याम तान निरोधा। इस प्रकार के अभ्यास से वैराग्य, अभ्यास वैराग्य से सिद्ध होता है, क्या मोक्ष, अर्थात योग से इंद्रियों के विषयों का निरोध करता हुआ, विषयों का निरोध, चित्त को सुख दुख इत्यादि द्वंद्वों से विमुक्त कर देना ही विषयों का निरोध होता है। योग चित्तवृत्ति निरोधा, जब हम द्वंद्वों से विमुक्त हो जाते हैं उस समय हमारा मन निरोधावस्था में हो जाता है। इस प्रकार से इसका वर्णन करते हुए मनुष्य की दुखमय गति स्थितियां और उसका चिंतन करते हुए अगले श्लोकों में महर्षि मनु कहते हैं, अवेक्षेत गतिर्णाम कर्म दोष समुद्भवा निरये चैव पतनम यतनाश्च यमक्षये यमक्षये। अर्थात कर्म दोष समुद्भवाह नणाम गति, कर्म के दोष से होने वाली मनुष्यों की कष्टयुक्त बुरी गतियों च निरये पतनम और कष्टों का भोगना च यमक्षये यातनाह प्राण में मृत्यु के समय होने वाली पीड़ाओं को अवेक्षते अवेक्षेत विचार और विचार करके मुक्ति के लिए प्रयत्न करें, क्योंकि मनुष्य अपने कर्मों से ही पतित होता है, उससे कर्मों के जो दोष होते हैं उसी से वो कष्ट युक्त होकर बुरी गतियों को प्राप्त करता है, कष्टों को भोगता है। और जो हम कर्म करते हैं उसका हमको सुख या दुख अवश्य प्राप्त होता है। यदि हमने अच्छा कर्म किया है तो हमें अच्छा सुख प्राप्त होगा, और हमने बुरा कर्म किया है तो हमको कष्ट होगा दुख होगा, और जब सुख होगा तो दुख अवश्य होगा, क्योंकि सुख और दुख एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। और इन सब कर्मों के कारण मनुष्य को दुख कष्टों को भोगना पड़ता है, और प्राण क्षय के समय में यानी मृत्यु के समय में जो शरीर में पीड़ा होती है, बहुत कष्ट होता है जिस समय प्राण निकलते हैं, उन सब का जब विचार करता है मनुष्य तब उसके मन में मुक्ति के लिए एक छटपटाहट उत्पन्न होती है। विप्रयोगम प्रियैश्चैवम संयोगम च तथा प्रियैः जरया चाभिभवनम व्याधिभिश्चोपपीडनम देहादुत्क्रमणम चास्मात् पुनर्गर्भे च संभवम योनिकोटि सहस्त्रेषु श्रतीश्चास्यांतरात्मनः। यहां पर कष्टों का विवेचन करते हुए प्रियैः विप्रयोगम, प्रियजनों से वियोग हो जाना, अप्रियैः संयोगम और शत्रुओं से संपर्क होना, उससे फिर कष्ट प्राप्ति होना, जरया अभिभवनम और बुढ़ापे से आक्रांत होना, च व्याधिभि उपपीडनम और रोगों से पीड़ित होना, च अस्मात् देहात् उत्क्रमणः और इस शरीर से जीव का निकल जाना, गर्भे पुनः संभवम और गर्भ में पुनः जन्म लेना, च और इस प्रकार अस्य अंतरात्मनः इस जीव का योनि कोटि सहस्त्रेषु श्रतिः सहस्त्रों प्रकार की अनेक विधि की योनियों में आगमन होना, कुत्ता बंदर सुअर इस प्रकार की जब योनियां जीव पाता है तो उसको कितना कष्ट होता होगा, इस इन सब का विचार करे और इन कष्टों को देखकर मुक्ति में अपने मन को लगावे। यहां पर मुक्ति अर्थात इस आवागमन के चक्र से अपने को मुक्त कर लेना, सुख दुख से मुक्त हो जाना, जिसको न सुख का ज्ञान हो न दुख का ज्ञान हो, सुख में भी समानावस्था रहे और दुख में भी उसी प्रकार से रहे, वही मुक्त होता है। एक मरणोपरांत मुक्ति और एक जीवन मुक्ति, जीते हुए जो मुक्ति होती है, जब हमको सुख और दुख का भान नहीं रह जाता तो हमारी जीवन मुक्ति हो जाती है, जीते हुए मुक्ति। और जब हम आवागमन से मुक्त होकर ब्रह्म में लीन हो जाते हैं। जब जीवात्मा परमात्मा में सन्निविष्ट हो जाती है उसका नाम है मरणोपरांत मुक्ति, मोक्ष। और अधर्म से दुख और धर्म से सुख प्राप्ति का विधान करते हैं। अधर्म प्रभवम चैव दुखयोगम शरीरिणाम, धर्मार्थ प्रभवम चैव सुख संयोगम अक्षयम्। शरीरिणाम दुखयोगम अधर्म प्रभवम एव, यह निश्चित है कि प्राणियों के सभी प्रकार के दुख अधर्म से ही मिलते हैं। स्वामी विवेकानंद कहते हैं, हम जो इस समय हैं वो अपने पूर्व कर्मों के अनुसार हैं। जहां पर हम आज अवस्थित हैं वो अपने पूर्व संचित कर्मों के द्वारा हैं, और हम जो होंगे वो भी जो हम आज कर रहे हैं उसके कारण ही होंगे। सच तो ये है कि हम में खुद को निर्माण करने की शक्ति छुपी हुई है। वही बात यहां महर्षि मनु कहते हैं, शरीरम दुखयोगम अधर्म प्रभवम एव, यह निश्चित है कि प्राणियों के सभी प्रकार के दुख अधर्म से ही मिलते हैं। और अक्षयम सुख संयोगम धर्म प्रभवम एव, अक्षय सुखों का प्राप्ति धर्म से ही होती है। इसको भी विचार करें और तदनुसार धर्माचरण करें, क्योंकि जब हम धर्म करेंगे तो प्रकृति का नियम है कि क्रिया और प्रतिक्रिया समान होती है। जैसे यदि हम कोई चीज कोई वस्तु देते हैं तो प्रकृति उसको अपने आप हमको प्राप्त करा देती है। क्यों? क्योंकि जैसे समुद्र से जल उड़कर बादल बनकर चली जाती है, किंतु उससे भी कहीं ज्यादा बर्फ इत्यादि से पिघलकर जल नदियों के करोड़ों हजारों नदियों के रूप में समुद्रों में प्रतिदिन गिरता है। इस कारण से प्रकृति का ये नियम है कि यदि हम किसी को कुछ देते हैं या किसी के प्रति अच्छी भावना रखते हैं तो वो भी हमारे प्रति अच्छी ही भावना रखेगा। योग से परमात्मा का प्रत्यक्ष करे, सूक्ष्मताम चान वेक्षेत योगेन परमात्मनः देहेषु च समुत्पत्तिम उत्पत्तमेष्व धेमेषु च। अर्थात योगेन परमात्मनः सूक्ष्मताम, योगाभ्यास से परमात्मा की सूक्ष्मता को जानी, और उत्तमेषु च अधमेषु देहेषु समुत्पत्तिम, उत्तम तथा अधम शरीरों में जन्म प्राप्ति के विषय में अवेक्षेत विचार किया करें। योग की विधि, भारत में एक योग दर्शन है जो महर्षि पतंजलि के द्वारा प्रवर्तित है, उसमें बताया गया है योग चित्त वृत्ति निरोधः। योग क्या है? अपने चित्त की वृत्तियों का निरोध ही योग है। योग युज धातु में घय प्रत्यय के योग से, घय प्रत्यय लगने से योग बनता है। योग युज धातु से निष्पत्ति हुई है, युज योगे युज समाधौ, इस प्रकार से योग के चार अर्थ बताए गए हैं। इस यहां पर युज समाधौ से ब्रह्म में, ब्रह्म से अपने को जोड़ना, योग का अर्थ होता है जोड़ना, जीवात्मा को परमात्मा से जोड़ना ही योग है। उसी का विधान है। योग कब होगा? योगश चित्त वृत्ति निरोधा, जब चित्त की वृत्तियों का निरोध यानी कि चित्त की गति, मन की गति रुक जाएगी, उसकी वृत्तियां रुक जाएंगी, प्रमाण विगपर्रे मिथ्या स्मृतयश्च, इतनी वृत्तियां होती हैं, पांच वृत्तियां बताई गई, इन सब वृत्तियों का निरोध करना ही योग कहता है। अगले श्लोक में यहां पर ध्यान देने योग्य है कि तदा दृष्टु स्वरूपे अवस्थानम्, जब दृष्टा ईश्वर के स्वरूप में जीवात्मा की स्थिति होती है, कब होती है, जब योग चित्त वृत्ति निरोधा, जब योग से चित्त वृत्ति का निरोध हो जाता है तब ईश्वर में जीवात्मा का मिलन होता है और जीवात्मा की स्थिति ईश्वर में संलयित हो जाती है। वेद भी इसका प्रमाण देते हुए कहते हैं, युञ्जानः प्रथमं मनस्तत्वाय सविताधियः अग्नेर्ज्योतिष निशा निचाम्य पृथिव्या अध्या भरत। युञ्जानः, योग करने वाले मनुष्य, तत्वाय, तत्व अर्थात ब्रह्म ज्ञान के लिए, युञ्जानः प्रथमं मनस्तत्वाय सविताधियः, प्रथमम मन, अपने मन को पहले ईश्वर में युक्त करते हैं, तब सविता परमेश्वर उनकी धियम बुद्धि को अपनी कृपा से युक्त कर देता है। अग्नेर ज्योतिम ज्योतिर निचाय, और अग्नेह फिर परमेश्वर से प्रकाश का निश्चय करके अध्या भरत यथावत धारण करते हैं। पृथिव्या, पृथ्वी भी बीच में योगी का ही लक्षण है। इस प्रकार से योग का वर्णन करते हुए 66वें श्लोक में, चाहे जिस अवस्था में हो धर्म का पालन करना चाहिए ऐसा बताते हुए महर्षि मनु कहते, दूषितोपि चरे धर्मम यत्र तत्राश्रमे रतः समः सर्वेषु भूतेषु नुलिंगम धर्मकारणम्। दूषितः अपि धर्मम न चरेत, धर्मम चरेत, दूषिता, यदि सन्यासी को मूर्ख संसारी लोग निंदा से दूषित अथवा अपमान भी करें तब भी धर्म का आचरण करें। यत्र तत्र आश्रमे आश्रमे रतः, ऐसे सन्यासी ब्रह्मचारी आश्रम आदि में मनुष्यों को करना उचित है। सर्वेषु भूतेषु समः, सब प्राणियों के पक्षपात रहित होकर सम बुद्धि रखे इत्यादि उत्तम काम करने से सन्यास्रम का विधि है, किंतु लिंगम धर्म कारणम न, केवल दंडादि चिन्ह धारण करना धर्म का कारण नहीं है। धर्माचरण के बिना बाहरी दिखावे से श्रेष्ठ फल नहीं प्राप्त होता। फलम कतक वृक्षस्य यद्य यद्यप्य अम्बु प्रसादकम न नाम ग्रहणादेव तस्य वारि प्रसीदति। यद्यपि कतक वृक्षस्य फलम, जैसे निर्मली वृक्ष का फल अम्ब प्रसादकम, पीस के गदले जल डालने से जल का शोधक होता है, तदपि यस्य नाम ग्रहणाति एव, बिना डाले उसके नाम कथन श्रवण मात्र से वारि न प्रसीदत, उसका जल शुद्ध नहीं होता। कहने का अर्थ है कि यद्यपि निर्मली वृक्ष का फल शुद्ध करने वाला हो है, फिर भी नाम ग्रहण मात्र से उसकी जल की शुद्धि नहीं होती, किंतु उसको ले पीस जल में डालने से ही उस मनुष्य का जल शुद्ध होता है। वैसे नाम मात्र से आश्रम में कुछ नहीं होता, किंतु अपने अपने आश्रम से धर्मयुक्त कर्म करने से ही आश्रम धारण करना सफल होता है। जैसे कबीरदास जी कहते हैं कि पावक कहा पांव जे दांझे, खांड कहे मुख मीठा, अर्थात अगर पावक कहने से पैर जल जाए और खांड यानी शर्करा कहने से मुंह मीठा हो जाए तो दुनिया गति पा जाए, राम कहे दुनिया गत पावे तो सब कोई तर जाई, राम नाम का मरण जाने, राम का नाम का जब तक धर्म का मर्म नहीं जाने तब तक उसको धारण करने से, मात्र चोला पहन लेने से कोई मुक्ति नहीं मिलने वाली। 68वें श्लोक में संरक्षणार्थ जंतु नाम रात्र वह निवासदा शरीरस्यात्यये चैव समीक्ष वसुधां चरेत। शरीरस्य अत्यये एव, शरीर से पीड़ित होने पर भी जंतूनां संरक्षणार्थम छोटे छोटे प्राणियों की रक्षा के लिए रात्रौ वा अहनि सदा रात और दिन में सदा वसुधां समीक्ष चरेत, पृथ्वी को देख कर ही चले, उनकी हत्या न हो या ध्यान रखे। अन्वा रात्रा चयन्तो यान्यन्तो हिनस्त्य ज्ञानतो यतिहि तेषां स्नात्वा विशुद्ध्यर्थं प्राणायाम मान षडाचरेत। यतिहि सन्यासी, अन्वा च रात्रा दिन और रात में अज्ञानतायान जंतून हिनस्ति अज्ञान से जिन प्राणियों की हत्या करता है तेषां विशुद्ध्यर्थ उनकी शुद्धि के लिए खट प्राणायाम मासनम आचरित 6 बार प्राणायाम करे। ये दोनों श्लोक भी 68वें और 69वें प्रक्षिप्त माने गए हैं। 70वें श्लोक में प्राणायाम ब्राह्मणस्य त्रयोपि विविधा विधिवत कृता विरहतिर प्रणवैर्युक्ता विधेयम परमं तपः। ब्राह्मणस्य, ब्राह्मण अथवा ब्रह्मविद व्यक्ति सन्यासी के द्वारा जो विधिवत विधि के अनुसार व्याहृत प्राणवई ही युक्ता प्रणव अर्थात ओंकार पूर्वक और भूर्भुव स्वः आदि सप्त व्याहृतियों से जप सहित अनुशीलन में प्रदर्शित त्रयः अपि तीनों प्रकार के बाह्य आभ्यंतर स्तंभक प्राणायाम अथवा न्यून से न्यून 3 प्राणायाम कृता किए जाते हैं परमं तपः विज्ञेयम्, वह इनका परम तप होता है। सन्यासी को उचित है अर्थात सन्यासी को उचित कि ओंकार पूर्वक सप्त ब्राह्मणों से विधि पूर्वक प्राणायाम जितनी शक्ति हो उतने करे, परंतु 3 से तो न्यून प्राणायाम कभी न करे, यही सन्यासी का परम तप है। प्राणायाम की विधि योग दर्शन में बताई गई है, वहां पर महर्षि मनु इसका विस्तृत विवेचन करते हैं। ओंकार पूर्वक ईश्वर जप का भी विधान वहां पर किया गया है। यहां वही विधि व्यास भाष्य पर आधारित स्वामी दयानंद के भाष्य सहित प्रस्तुत की जाती है। इस विधि को अपना उपासक अशुद्धि क्षय ईश्वर सिद्धि और बल पराक्रम से वृद्धि करें। प्राणायाम का लक्षण बताते हो महर्षि पतंजलि कहते हैं तस्मिन् सति श्वासः प्रश्वासो गतिर विच्छेदः प्राणायामः। जो वायु बाहर से भीतर आती है, जिसको श्वास और भीतर से बाहर जाता है उसको प्रश्वास कहते हैं। अर्थात जो वायु हम अंदर खींचते हैं उसको श्वास कहते हैं और जो बाहर निकालते हैं उसे प्रश्वास कहते हैं। उन दोनों के आने जाने के विचार से रोके अर्थात उनको उनकी गति को कम कर देना, नासिका को हाथ से कभी न पकड़े किंतु ज्ञान से उनके रोकने का प्राणायाम कहते हैं कि श्वास को आने और जाने से रोकना, उसकी गति को अवरुद्ध करने के अभ्यास को ही प्राणायाम कहते हैं। तस्मिन् सति श्वास प्रश्वासयोः गति विच्छेदः प्राणायामः। अन्य जगह कहते हैं प्रक्षरदन विधारणाभ्याम वा प्राणस्य, जैसे भोजन के पीछे किसी प्रकार से वमन हो जाता है वैसे ही भीतर के प्राण को बाहर निकालने के सुखपूर्वक जितना बल बन सके उतना बाहर ही रोके, पुनः धीरे धीरे भीतर लेके पुनरपि ऐसा करे। इसी प्रकार बारंबार अभ्यास करने से प्राण उपासक वश में हो जाता है और प्राण के स्थित होने से मन, मन के स्थिर होने से आत्मा, आत्मा के स्थिर होने से आत्मस्वरूप ज्ञात हो जाता है। और इन तीनों के मन, प्राण और आत्मा के स्थिर होने से आत्मा के बीच जो आनंद स्वरूप अंतर्यामी पर व्यापक परमेश्वर है उस स्वरूप में मग्न हो जाना चाहिए। जैसे मनुष्य जल में गोता मारकर ऊपर आता है फिर गोता लगा जाता है, उसी प्रकार अपनी आत्मा को परमेश्वर के बीच में बारंबार लगाना चाहिए। प्राणायाम के भेदों का योग दर्शन में विस्तृत विवेचन किया गया है। सतु बाह्याभ्यांतर स्तंभ वृत्तिर देश काल संख्या भी परिदृष्टो दीर्घ सूक्ष्म बाह्याभ्यांतर विशेषा पेधी चतुर्थ। कहते हैं इसके तीन भेद होते, रेचक आभ्यांतर अर्थात पूरक और स्तंभ वृत्ति अर्थात कुंभक। रेचक पूरक और कुंभक, जो हम श्वास को बाहर निकालते हैं इसे रेचक कहते हैं, जो हम अंदर को खींचते इसे पूरक कहते हैं, और स्तंभक यानी कुंभक जब हम बाहर निकालकर रोकते हैं उसे बाह्य कुंभक कहते हैं, और अंदर ले जाकर सांस को रोकते हैं उसे अंतः कुंभक कहते हैं। इस प्रकार से कई भेद इसके बताए गए हैं कि जैसा योग सूत्र में कहा गया है बाह्यांतर विषयापेक्षी, अर्थात जब श्वास भीतर से बाहर को आवे तब बाहर की कुछ रोकता रहे, और जब बाहर से भीतर को जाए उस भीतर को थोड़ा थोड़ा रोकता रहे, यही गौड़ भेद है। अतः इसकी पृथक गणना बाह्यांतर पर आधारित है। दो प्रकार के स्तंभक होते हैं। प्राणायाम शब्द का अर्थ है कि, लेकिन यहां पर देखना यह है कोई कोई बाह्य रेचक और पूरक के साथ रोकना प्रक्रिया को नहीं मानते, यह विचार ठीक नहीं है। इस प्रकार तो उच्छ्वास निश्वास प्रश्वास में ही कहलाएंगे। प्राणायाम शब्द का है अर्थ ही इस मान्यता को गलत सिद्ध कर देता। आयाम का अर्थ है प्रसार विस्तार फैलाव या नियंत्रण। इस प्रकार प्राण आयाम शब्द का अर्थ हुआ प्राण का विस्तार विस्तार या नियंत्रण। प्राणायाम शब्द सभी भेदों के साथ संयुक्त है, अतः उसका अर्थ भी प्राणायाम अर्थात अर्थ के साथ जोड़कर करना चाहिए। जैसे बाह्य प्राणायाम, आभ्यंतर प्राणायाम, स्तंभक प्राणायाम, प्राणायाम का मंत्र बताया गया है। शास्त्रों और व्याहतियों की गणना 3 और 7 के रूप में मिलती है। ऋषि दयानंद ने 7 व्याहतियों की गणना करके प्राणायाम की विधि प्रदर्शित की है, क्योंकि 3 व्याहतियों उनके अंतर्गत ही हो जाती है। उन्होंने व्याहति और मंत्र निम्न प्रकार दिए। इस पवित्र आश्रम में सफल करने के लिए सन्यासी पुरुष विधिवत योग रीति से 7 व्याहतियों के पूर्व 7 प्रणव लगा के, जैसा कि प्राणायाम का मंत्र लिखा है उसको मन में जपता हुआ भी प्राणायाम करे तो जानो अत्युत्कृष्ट तप करता है। प्राणायाम का मंत्र है ओम भो ओम भुवः ओम स्वः ओम महः ओम जनः ओम तपः ओम सत्यम। इस रीत से कम 3 बार और अधिक से अधिक 21 बार प्राणायाम करें। प्राणायाम से इंद्रियों के दोष का क्षय होता है। 71वें श्लोक में महर्षि मनु यही बताते हैं। दह्यन्ते ध्यायमानानां धतूनां हि यथा मलाः धातूनां हि यथा मलाः तथेन्द्रियाणां दह्यन्ते दोषा प्राणस्य निग्रहात्। क्योंकि यथा अध्ययमानानां धातूनां मलः दह्यन्ते, जैसे अग्नि में तपाने और गलाने से धातुओं के मल नष्ट हो जाते हैं, तथा प्राणस्य निग्रहात्, वैसे प्राणों के निग्रह से इंद्रियाणां दोषा दह्यन्ते, मन आदि के इंद्रियों के दोष भस्मीभूत हो जाते हैं। प्राणायाम के दोषों का निवारण, इसमें योग दर्शन का प्रमाण देते हुए यहां पर विद्वान कहते हैं, योगांगान अनुष्ठानाद शुद्धिक्षये ज्ञान दीप्तिरा विवेकाख्याति। प्राणायाम भी योग का एक प्रमुख अंग है। जब मनुष्य प्राणायाम करता है तब प्रतिक्षण उत्तरोत्तर काल में अशुद्धि का नाश और ज्ञान का प्रकाश होता। जब तक मुक्ति न हो सकी तब तक उसके आत्मा का ज्ञान बराबर बढ़ता जाता है। इस प्रकार बारंबार अभ्यास करने से प्राण उपासक वश में हो जाता है, और प्राण के स्थिर होने पर मन, मन के स्थिर होने पर आत्मा, और आत्मा भी के स्थिर होने पर ईश्वर की प्राप्ति होती। ततः क्षीयते प्रकाशावरणम्। योग सूत्र में बताया गया है प्राणायाम सिद्धि और प्राणायाम पूर्वक उपासना करने के पश्चात आत्मा के ज्ञान को ढांकने वाला इंद्रियों का दोष, अज्ञान रूपी जो आवरण है, वह नष्ट हो जाता है और ज्ञान का प्रकाश धीरे धीरे बढ़ता जाता। महर्षि दयानंद इस बारे में लिखते हैं, प्राण अपने बस में होने से मन और इंद्रियां भी स्वाधीन होते हैं, बल और पुरुषार्थ बढ़कर बुद्धि तीव्र सूक्ष्मतर हो जाती है, जो बहुत कठिन और सूक्ष्म विषय को शीघ्र ग्रहण करती है। इससे मनुष्य शरीर में वीर वृद्धि को प्राप्त होकर स्थिर बल, पराक्रम और जितेंद्रियता सभी शास्त्रों को थोड़े ही काल में समझकर उपस्थित कर लेगा। प्राणायाम धारणा प्रत्याहार से दोषों का क्षय बताते हुए यहां पर विवेचन करते हैं। प्राणायामैर देहद्दोषान् धारणाभिश्चकिल्विषम् प्रत्याहारेण सर्गान् ध्यायानेनानीश्वरान् गुणान्। इसलिए सन्यासी लोग प्राणायामैः दोषान्, प्राणायामों के दोषों को, धारणाभिश्चकिल्विषम्, धारणाओं से अंतःकरण के मैल को, प्रत्याहरण संसर्गान्, प्रत्याहार से संसर्ग के हुए दोषों को, और ध्यानेन अनीश्वरान गुणान, ध्यान से अविद्या, पक्षपात के आदि अनीश्वरा के दोषों को छुड़ाकर पक्षपात रहित होकर ईश्वर के गुणों को धारण करे, दहेत सब प्रकार के दोषों को भस्म कर दे। यहां पर इसका अर्थ स्पष्ट करते हुए, इसीलिए सन्यासी लोग नित्य प्रति प्राणायामों से आत्मा, अंतःकरण और इंद्रियों के दोषों को, धारणाओं से पाप और प्रत्याहारों से संग दोष, ध्यान से अनिश्वरता के गुणों को, अर्थात हर्ष शोक विद्या के दोष, जीव दोषों को भस्मीभूत करें। यहां पर योग शास्त्र के प्रमाण लेते हुए इन श्लोकों का विवेचन किया जा रहा है कि प्राणायाम से इंद्रियों के दोषों का दहन किस प्रकार होता है, यह इसकी समीक्षा से स्पष्ट होता है। धारणाओं में अंतःकरण की किलविस अर्थात बुराई को दूर करे, देशबंधश्च चित्तस्य धारणा। योग सूत्र कहते हैं देशबंधश्च चित्तस्य धारणा। धारणा उसको कहते हैं जो मन की चंचलता को छुड़ाकर नाभि, हृदय, मस्तिष्क, नासिका और जीभ के अग्रभाग आदि देशों पर स्थित करके ओमकार का जप, उसका अर्थ जो परमेश्वर है उसका विचार करे, अथवा बुराइयों को, दोषों को समझकर उनको छोड़ने के लिए व्रतों को धारण भी करना धारणा है। किंच धारणाश्च योगता मनसा। धारणाओं के मन में ज्ञान की योग्यता और विवेक बढ़ता है, जिससे बुराइयों का त्याग होता है। प्रत्याहार के द्वारा संसर्ग जन्य दोष को छोड़े स्वविषयां संप्रयोगे चित्तस्य स्वरूपानुकारण इवेन्द्रियाणां प्रत्याहारः। प्रत्याहार उसका नाम है कि जब पुरुष अपने मन को जीत लेता है तब इंद्रियों को जीतना अपने आप हो जाता है, क्योंकि मन ही इंद्रियों को चलाने वाला है। जो पंच कर्मेंद्रिया और पंच ज्ञानेंद्रिया हैं, इनका जो नियंत्रक है वो मन है। मन को साध लेने पर हम इंद्रियों को पर विजय अनायास ही पा जाते हैं, और प्रत्याहार से मन स्वस्थ में हो जाता है और इंद्रियों पर दृढ़ वशीभूत हो जाता है। ततः परमावश्यते इंद्रियाणाम, तब वह मनुष्य जितेंद्रिय होकर मन को जहां ठहराना चाहे, चलाना चाहे, वहां चला सकता है। फिर इसको ज्ञान हो जाना सदा सत्य ही प्रीत हो जाती है, असत्य से कभी नहीं। व्यास भाष्य में भी यही बताया गया है, अपरिग्रह को स्पष्ट करते हुए लिखा है, विषयाणाम मर्जनम लक्षण क्षय संग हिंसा दोष दर्शनात् अस्वीकरण अपरिग्रह। विषयों में अर्जन दोष, रक्षण दोष, क्षय दोष, संग दोष तथा हिंसा दोष देखने को से उनका जो अस्वीकार अर्थात त्याग है वह अपरिग्रह कहा गया है। ध्यान से अनीश्वर गुणों अर्थात अविद्या अज्ञान आदि के त्याग करके ईश्वरीय गुरु को धारण करना, तत् प्रत्येक तानता ध्यानम, प्रत्येकता ध्यानम, धारणा के पीछे उसी देश में ध्यान और आश्रय के योग जो अंतर्यामी व्यापक परमेश्वर है उसके प्रकाश और आनंद में अत्यंत विचार और प्रेम भक्ति के साथ इस प्रकार प्रवेश करना कि जैसे समुद्र के बीच नदी प्रवेश करती है, उस समय ईश्वर को छोड़ किसी अन्य पदार्थ का स्मरण नहीं करना किंतु उसी अंतर्यामी के स्वरूप और ज्ञान में मग्न होना, इसी का नाम ध्यान है। करें तत्र प्रत्ययिकता प्रत्ययिकता नता ध्यानम, एकता नता ध्यानम, उस ईश्वर से एकत्व हो जाना ही ध्यान है। 73वें श्लोक में ध्यान से तत्व का ज्ञान होता है। उच्चावचेषु भूचे भूतेषु दुर्गेयाम कृतात्मभिः ध्याने योगेन संपश्येत् गतिमस्यांतरात्मनः। उच्च अवचेष भूतेषु, बड़े छोटे प्राणी और अप्राणियों में, अकृतात्मभिः दुर्गेयाम दुर्गेयाम अस्य अंतात् अंतरात्मनः गतिम, जो अशुद्धात्माओं से देखने से योग्य नहीं है वह अंतर्यामी परमात्मा को गति अर्थात प्राप्ति को ध्यान योगेन संपश्येत, ध्यान योग से ही संन्यासी देख सकता है। क्योंकि जिनकी आत्मा कलुषित है वो कभी भी ईश्वर दर्शन नहीं कर सकते। अपने अंतर्निहित जिसके पास विश्वास और श्रद्धा नहीं है वो कभी ईश्वर का साक्षात्कार नहीं कर सकता। गोस्वामी जी अपने रामचरितमानस में बहुत ही अच्छी बात कहते हैं, वंदे भवानी शंकरौ वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणौ याभ्याम विना न पश्यन्ति, जिसके बिना नहीं देख सकते श्रद्धा और विश्वास के बिना, याभ्याम बिना न पश्यन्ति सिद्धाः स्वान्तस्थमीश्वरम्, उस श्रद्धा और विश्वास के बिना सिद्ध लोग अपने अंतस्थ ईश्वर को नहीं देख सकते। इसलिए हमारी आत्मा स्वच्छ होनी चाहिए, विश्वास पूर्ण होनी चाहिए, श्रद्धा से भरी होनी चाहिए, तब हमें ईश्वर का अपने अंतस्थ ईश्वर का भान हो जाएगा। सम्यक् दर्शन संपन्नः कर्मभिर्न निबध्यते दर्शनेन विहीनस्तु संसारं प्रतिपद्यते। सम्यक् दर्शन संपन्नः, जो सन्यासी यथार्थ ज्ञान व खड़ दर्शनों से युक्त है, कर्म भी न निबद्धति, वह दुष्ट कर्मों में बद्ध नहीं हो सकता। और तू दर्शनेन विहीन, और जो ज्ञान विद्या योगाभ्यास सत्संग धर्मानुष्ठान खट दर्शनों से रहित है, विज्ञानहीन होकर संन्यास लेता है, वह संन्यास पदवी और मोक्ष को प्राप्त न होकर संन्यासम प्रतिपद्यते, जन्म मरण रूप संसार को प्राप्त होता है। दर्शन एवं ध्यान योग का विवेचन करते हुए योग सूत्र का प्रमाण यहां पर दिया जा रहा है। कहते हैं तत्र ध्यान जम नाशयम, अर्थात जो ध्यान से सिद्ध चित्त है यथार्थ ज्ञान से अनाशय कर्म वासना और क्लेश वासना से रहित होता है, कर्मों से बद्ध नहीं होता, उसके कर्म दग्ध बीज के समान होने से फिर फलोन्मुख नहीं होते, फिर भी मोक्ष की स्थिति में पहुंचता है। दर्शनों से यहां पुस्तक विशेष से दर्शन ग्रंथों से अभिप्राय नहीं है, अपित दर्शन विद्वानों से अभिप्राय है। ईश्वर आदि के तत्वों का प्रत्यक्ष ज्ञान करने वाला विद्या दर्शन विद्या कहा जाता है। कहते हैं अहिंसा वैदिक कर्मों से भी परमात्मा पद की प्राप्त होती है। अहिंसे इंद्रिया संगैर वैदिक शैव कर्म भी तपसशरणैशोग्रैः साधयन्ति हि तत्पदम्। अहिंसया सब भूतों पर निर्भयर इंद्रिय असंगई, इंद्रियों के विषयों का त्याग, वैदिकैः कर्म भी वेदोक्त कर्म च उग्रैः तपेश्वरशरैः और उग्र अत्युग्र तपश्चरण से इह तत्पदम साधयन्ति, इस संसार में मोक्ष को पूर्वोक्त सन्यासी ही सिद्ध कर और करा सकते, अन्य नहीं। अपवित्र शरीर का त्याग बताया गया है। अतिस्थूलम समा स्नायुक्तम मांस सोणित तलेपनम चरमा वणनद्धम दुर्गंधिपूर्णम मूत्रपुरुषयो जराशोक समाविष्टम रोगयतनमातुरम रजस्वलमनत्यम च भूतावासमिमं त्यजेत। हड्डियों के ढांचे रूप स्नायु रूप रस्सी वाले मांस लहू से भरे चमड़ी से ढके मूत्र और विष्टा की दुर्गंध से भरे वृद्धावस्था एवं शोक से युक्त रोगों के घर भूख प्यास आदि से पीड़ित होने वाले रजोगुण वाले मिट्टी रूप नष्ट होने वाले इन महाभूतों के आश्रय स्थान अर्थात शरीर को छोड़ देवे। नदी कूलम यथा वृक्षो वृक्षम हुआ शकुनिर यथा तथा तजन्यमं देहं कृच्छात् ग्राहात् विमुच्यते। जैसे वृक्ष नदी के किनारे को अथवा शकुनि वृक्षम जैसे पक्षी वृक्ष को बिना किसी दुख और मोह के छोड़ देता है, वैसे ही इस शरीर को छोड़कर व्यक्ति रूप दुख रूपी मगरमच्छ से छूट जाता है। प्रियेषु स्वेषु सुकृतम अप्रियेषु च दुष्कृतम विसृज्य ध्यान योगेन ब्रह्माभ्येति सनातनम। योगी अपने प्रियजनों से में पुण्य को और शत्रुओं में पाप को छोड़कर ध्यान योग द्वारा सनातन ब्रह्म को प्राप्त करता है। यदा भावेन भवति सर्वभावेन निस्प्रहः तदा सुखमवाप्नोति प्रेत्यचेह च शाश्वतम्। यदा जब सन्यासी सर्वभावेषु भावेन निस्प्रहः भवति सब पदार्थों में अपने भावों से निस्प्रह हो जाता है, तदा इह च प्रेत्य शाश्वतम सुखम अवाप्नोति, इस लोक में जन्म और मरण को पाकर परलोक में मुक्ति में परमात्मा को प्राप्त होके निरंतर सुख को प्राप्त करता है। अनेन विधिना सर्वा त्यक्त्वा संगाक्षणैः शनैः सर्वा सर्वद्वंद विमुक्त विनिर्मुक्तो ब्राह्मणेवावतिष्ठति। अनेन विधिना इस विधि से शनैः शनैः धीरे धीरे सर्वान संगान त्यक्त्वा सब संगों से हुए दोष को छोड़कर सर्वद्वंद्वः विनिर्मुक्ता सभी द्वंद्वों को हर्ष शोकादि द्वंद्वों से विमुक्त होकर ब्रह्मणि एव अवतिष्ठते विद्वान सन्यासी ब्रह्म में स्थिर होता है। ध्यानिकं समवैते तत् यदेत दभिशब्दवित्तं नयनध्यात्मवित् कश्चित् क्रियाफलमुपाश्नुते। यत एतत् अभिशब्दम्, यह जो कुछ पहला कहा गया, एतत् सर्वमेव ध्यानिकम्, यह सब ध्यान योग के द्वारा सिद्ध होने वाला है। अन अध्यात्मविद कश्चित्, अध्यात्म ज्ञान से रहित कोई भी व्यक्ति क्रियाफलम नहीं उपाश्नुते, उपर्युक्त कर्मों को के फल को नहीं पा सकता। अधियज्ञम ब्रह्म जपे दाधिदैव दैविकमेव च आध्यात्मिकम च सततम वेदांताभिहतम च यत। यज्ञ संबंधी और अधिदैविक देवता संबंधी और वेदों में जो परमात्मा संबंधी वर्णित है, ऐसे मंत्रों को निरंतर जाप करें। इदम शरणम अज्ञानम इदमेव विजानताम इदमन्विक्षिताम स्वर्गम स्वर्गा स्वर्गम इदमान्यत्तमिक्षिताम। इदम अज्ञताम शरणम, यही अज्ञानियों का शरण। इदम च विजन एव विजानताम, यही विद्वान सन्यासियों का। इदम स्वर्गम इक्षताम, यही स्वर्ग खोज करने वालों का। इदम वान्तेयम इक्षताम, यही अनंत सुख की इच्छा करने वाले मनुष्यों का आश्रय होता है। अनेन क्रमयोगेन परिव्रजत योदुजः सव्यूयेहि पापात्मनम् पात्मानम परम ब्रह्मादि गक्षति। 85वें श्लोक में कहते हैं कि इस क्रमानुसार संन्यास योग से जो द्विज अर्थात ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य संन्यास ग्रहण करता है, सह यह पात्मानम विधुय, इस संसार और शरीर में सब पापों को छोड़कर परम ब्रह्मम अधिगक्षति, पर ब्रह्म को प्राप्त होता है। एष धर्मोऽनुशिष्टो वो यतीनाम नियतात्मनाम वेद संन्यासिकानाम तो कर्मयोगम निबोधयत। 86वें श्लोक में कहते हैं कि यह नियतात्मनाम यतीनाम धर्म वही अनुशिष्टा, मन को वश करने वाले सन्यासियों का धर्म तुमसे कहा, अब वेद सन्यासियों का कर्म सुनो। ब्रह्मचारी गृहस्थश्च वानप्रस्थो यतिस्तथा एते गृहस्थ प्रभवाः चत्वारो पृथगाश्रमः। ब्रह्मचर्य गृहस्थ वानप्रस्थ तथा सन्यास, ये चारों अलग अलग आश्रम गृहस्थ आश्रम से उत्पन्न हुए। सर्वे क्रमसत्वेते यथाशास्त्रम निवेशता निषेविता यथोक्त कारणम विप्रम नयन्ति परमागतिम। ये सब क्रमानुसार शास्त्रोक्त विधानों के अनुसार पालन करने पर कर्तव्यों को यथोक्त विधि पालन करने वाले द्विज को उत्तम गति को प्राप्त होता है। सर्वेषाम अपि चैतेषाम वेद स्मृति विधानतः गृहस्थ उच्यते श्रेष्ठ सत्री नेतान विभर्ति। वेदों और स्तुतियों में कहे अनुसार सर्वेषाम अपि एषाम सर्वेषाम अपि, इन सब आश्रमों में गृहस्थ श्रेष्ठ उच्यते, गृहस्थ सबसे दायित्वपूर्ण श्रेष्ठ है। ही सह एतान त्रीन विभर्ति, क्योंकि वह तीनों का भरण पोषण करता है। यथा नदी नदा सर्वे सागरे यान्ति संस्थितम तथैवाश्रमिणः सर्वे गृहस्थे यान्ति सन्निधम। जैसे नदी बड़े बड़े नद तब तक भ्रमते ही रहते हैं जब तक समुद्र को प्राप्त नहीं हो, वैसे गृहस्थ ही आश्रम सब आश्रमों गृहस्थ में ही सब आश्रम स्थिर रहते हैं। बिना गृहस्थ आश्रम के कोई भी आश्रम व्यवहार सिद्ध नहीं होता। चतुर्भिरपि चैवतेर नित्यमे नित्यमाश्रम भिर्दुज दशलक्षणको धर्म सेवितव्य प्रयत्नतः एतैः चतुर्भिः आश्रमभिः द्विजैः। इसलिए ब्रह्मचारी गृहस्थ वानप्रस्थ और सन्यासियों के योग्य है कि प्रयत्नतः प्रयत्न से दस लक्षण का धर्म सेवितव्य, दक्ष लक्षण युक्त निम्नलिखित धर्म का सेवन करे। धरते शमादमोस्तेयम शौचमिंद्रिय निग्रह धीर विद्या सप्तम क्रोधो दशकम धर्म लक्षणम। पहला लक्षण धृति, सदा धैर्य रखना। दूसरा क्षमा, जो निंदा स्तुति अपमान हानि लाभ आदि दुखों से सहन उसको सहन करना। तीसरा दम, मन की सदा धर्म में प्रवृत्ति करना, अधर्म से रोक देना। और अस्तेय, चोरी न करना। सोच राग द्वेष से पक्षपात छोड़कर भीतर जल मृत्तिका मार्जन आदि से बाहर की पवित्रता रखना। इंद्रिय निग्रह, अपने इंद्रियों को रोके रखना, धर्म में ही सदा लगाना, सातवां धी, मादक द्रव्य बुद्धिनाशक अन्य पदार्थों से दुष्टों का संग, ये सब न करना, आठवां विद्या, पृथ्वी से लेकर परमेश्वर पर्यंत यथार्थ ज्ञान और यथा योग्य उपकार लेना, सत्य जैसा आत्मा में वैसा मन में, जैसा वाणी में वैसा कर्म में बरतना, ये विद्या है। सत्य, जो पदार्थ जैसा को वैसा समझना, वैसा ही बोलना, वैसा ही करना। अक्रोध, क्रोधादि दोषों को छोड़ के शांत्यादि गुणों को ग्रहण करना, धर्म लक्षण, धर्म का लक्षण कहा गया है। दस लक्षणानि धर्मस्य ये विप्रा समधीयते अधीत चानुवर्तन्ते ये यान्ति परमां गतिं। दस धर्म के दस लक्षणों को जो द्विज अध्ययन मनन करते हैं, पढ़कर मनन करके इनका पालन करते हैं, वे उत्तम गति को प्राप्त करते हैं। दस लक्षण कम धर्म मनुतिष्ठ समाहिता वेदान विविदच्छुत्वा सन्यस्य वेदोजुजः। दस लक्षणों वाले धर्म का पालन करते हुए सावधान होकर विधि के अनुसार अपने सिद्धों को सुनकर देव ऋषि और पितृ से उर्ण हुआ द्विज संन्यास धारण करे, ऐसा 94 श्लोक में बताया गया। 95 श्लोक में कहते संन्यस्त सर्वकर्माणि कर्म दोषानु पानुदम नियतो वेदम अभ्यस्य पुत्रै स्वैर्यै सुखम वसेत। सब घर्मों के कार्य, घर के कार्यों से मुक्त होकर कर्मों से उत्पन्न दोषों को दूर करता हुआ, नित्य पूर्वक वेद का अभ्यास करता हुआ, पुत्र के द्वारा सुख साधनों से उस आश्रम में सुख पूर्वक बसे। एवं संन्यस्य कर्माणि स्वकर्म कार्य परमो स्पृह संन्यासेन अपहते हत्येन प्राप्नोति परमागतिम। इस प्रकार सब कार्यों को छोड़कर अपने कर्तव्यों के पालन में लगा रहकर सभी इच्छाओं से रहित होकर संन्यास से पाप को नष्ट करके द्विज परम गति को प्राप्त होता है। 97 श्लोक में कहते ये सवो हितो धर्मो ब्राह्मणस्य चतुर्विधा पुण्योक्षय फला प्रेत्या राजा धर्म निबोधयत। कहते हैं कि यह चार प्रकार के ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और संन्यास ब्राह्मण का धर्म है। यह वर्तमान में पूर्ण स्वरूप और शरीर छोड़ के मुक्त रूप अक्षय आनंद को देने वाला संन्यास धर्म है। इसके आगे राजाओं का धर्म मुझसे सुनो। इस प्रकार से सप्तम अध्याय का आरंभ आगे करेंगे, यहाँ पर छठे अध्याय का अवसान होता है। इति महर्षि मनुप्रोक्तायाम मनुस्मृतौ वानप्रस्थ संन्यास धर्म विषय का 6 अध्यायः।